आतिफ, हाल में बलूचिस्तान के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने भारत से दखलंदाजी की भी अपील की है। ये जो लगातार मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें आ रही हैं, ये कहाँ तक सच है? किस तरह की परिस्थिति है वहाँ पर असल में?
जहाँ तक आप सिचुएशन या सूरत हाल की बात कर रही हैं बलूचिस्तान की, तो वाकईतन वो तो बहुत ख़राब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज का ऐसा कंट्रोल है कि वहाँ से आपको आज़ादाना तौर पर कोई ख़बर भी नहीं मिल सकती कि क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं सूरत हाल। लेकिन जो इंसानी हकूक़ के इदारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का, उनकी जब इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है तो हमें मालूम होता है कि सूरत हाल बहुत ख़राब है। और जब देखिए जी, आपके पास खाने को रोटी ना हो और आपके पास मुलाजमत ना हो, आपके पास तालीम ना हो, आपके पास किसी किस्म के कोई वसाइल ना हो, तो इंसानों में एक हलचल मचती है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचती है और वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यही वही मुहरिकात हैं या मोटिव्स हैं जो कि फिर आपको रेजिस्टेंस पर माइल करते हैं, उसकी तरफ लेके जाते हैं। तो ये वजह
जी, जैसा कि आपने कहा कि जब इस तरह की सूरत हाल होते हैं तो मुखालफत भी होती है, विरोध होता है, लोग हथियार उठा लेते हैं। कौन लोग हैं ये? क्या ये स्थानीय सरदार हैं या ये इनकी किसी और तरह के मकसद हैं?
देखिए जी, एक बहुत मजेदार बात है कि हमारा जो लोकल मीडिया और जिस तरीके से हमारी ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी होती है उस पर ये सारा इल्ज़ाम हम सरदारों पर डाल देते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस वक्त जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जो अल्लाह नज़र बलोच, बड़ा मशहूर नाम है, इस वक्त पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं, वो एक डॉक्टर थे। मसलन इन्हीं वजूहात की बिना पर वो इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं। ना वो कोई सरदार हैं, ना उनका किसी कबीले से ताल्लुक़ है, और वो बहुत आम लोग हैं और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत जेन्युइन हैं।
क्या मांग है इन लोगों की?
अब तो मांग थोड़ी सी बहुत बदल गई है, बहुत सख्त हो गई है। हम लेके रहेंगे आज़ादी, सो कॉल्ड, या जैसे भी कह लें। तो मतलब अब वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने अलहदा होना है। तो कोशिश की, हुकूमत ने कोशिश की, पाकिस्तान ने, कि मुजाकरात किए जाएं, लेकिन फिर वही चक्कर है ना कि जो प्रॉब्लम जो है एतमाद का, कॉन्फिडेंस लेवल। हम कहते हैं कि जी गैर मुल्की हाथ है इसमें, हम कहते हैं कि जी फलां आ रहा है। पहली जो अस्करी ऑपरेशन, जो फौजी मिलिट्री ऑपरेशन जो होता है बलूचिस्तान में, वो 48 में होता है, पाकिस्तान के बनने के एक साल बाद होता है। बोले कहाँ थे सरदार उस वक्त? उस वक्त कौन सा मुल्क उनको कह रहा था? बोले खान ऑफ कलात ने जब कायद आज़म के साथ मिलकर जब उन्होंने कहा कि जी हाँ हम हिस्सा बनते हैं, अब उसी दौरान अभी कलात की असम्बली में मुजाकरात पूरे भी नहीं हुए थे तो पाकिस्तानी फौज ने वहाँ पर जाके कहा कि जी हम इसको कंट्रोल में कर लेते हैं। तो मतलब पॉलिटिकल जो प्रोसेस था वहीं पे एंड हो गया था। फिर हमें आपको मिलिट्री ऑपरेशन नज़र आते हैं, मतलब 48 में हुआ है, 58 में हुआ है, मिड 60s में हुआ, फिर रिसेंटली 2006 में मुशरफ के दौर में बुगटी को मारा गया। तो ये चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं कि बहुत पेचीदा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अब तो उनकी मांग, मतलब पहले कुछ और थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो कि वो वहाँ के जो लीडर हैं, वो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के जो मानने वाले हैं, अब वो बहुत रंजीदा हैं, गुस्से में हैं, वो तो अलहदगी की बात करने लगे हैं।
जी, जैसा कि अभी आपने गैर मुल्की मदाखलत यानी फॉरेन इंटरफेरेंस की बात की, जैसा कि भारत पर लगातार इल्ज़ाम लगते भी रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में राष्ट्रवादी नेताओं को सपोर्ट कर रहा है और इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, कितना हद तक पॉसिबल है, संभव है किसी और देश की दखल अंदाजी?
अभी देखें, ये इसके लिए तो खैर आपको इंटेलिजेंस के सबूत चाहिए होंगे, एविडेंस चाहिए होंगे। गैर मुल्की मफादात तो खैर हर जगह पे होते हैं। मतलब पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो अब किसी एक मुल्क का जो हिस्सा है उसके प्रॉब्लम्स कितने शदीद हैं। अगर आप उसको हल नहीं करते हैं तो फिर सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर और इलाकाई, मतलब रीजनल पावर बनने के तौर पर कोई भी आ सकता है और वो कोई चीज़ें होती है। लेकिन हमारे, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमें इंटरनेशनल फ्रेम देखना पड़ेगा कि जब नाटो भी कहीं पर जाकर कार्रवाई करता है तो उसके पास सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी इजाज़त होती है, एक मैंडेट मिलता है। तो अगर यहाँ पे भी अगर ऐसी सूरत हाल है तो मेरे ख्याल में अक़वामे मुत्तहिदा से राबता करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि इलाकाई सतह पर कोई डायलॉग में मदद मिल सकती है।
जब इस तरह की परिस्थिति होती है किसी देश में जहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह की खबरें लगातार बलूचिस्तान से आ रही हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए आगे आती हैं। बलूचिस्तान में किस तरह की स्थिति, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि रेड क्रॉस भी एक्टिव नहीं है वहाँ उस तरह से और लोगों को उस हद तक मदद नहीं मुहैया हो पा रही है जैसे कि होनी चाहिए।
वहाँ पे सिर्फ एक ही ताकत एक्टिव है और वो है पाकिस्तानी फौज, और जब तक वो है और वही है तो इमदादी इदारों की आप बात कर रहे हैं या रेड क्रॉस की बात कर रहे हैं या और ह्यूमन राइट्स के जो वहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं, उनका कोई गैर मुल्की जो उनका कारकुन है वो वहाँ पर नहीं है, वो लोकल हैं सारे। तो वहाँ पे फंड्स की कमी है और इनसिक्योरिटी है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इमदादी इदारा वहाँ पर काम करने जाएगा भी तो उसको अपनी इनसिक्योरिटी की फिक्र पड़ जाएगी और फिर वो वहाँ से भाग जाएगा। अब मतलब तमाम इमदादी इदारे भी तो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी अवलीन प्रायोरिटी या तरजीह है, तो उसको बनाना बेहतर है और वो कंट्रोल पाकिस्तानी फौज के। अब देखें कि सूरत हाल क्या होती है वहाँ पर।